आत्म दीप जगाए हो, आत्म दीप जगाए। घर घर में हो सच्ची दिवाली, घर घर में हो सच्ची दिवाली। ज्ञान प्रकाश फैलाए हो, आत्म दीप जगाए हो, आत्म दीप जगाए। मन मना भव के मंत्र से कर अंतर मन की सफाई। 84 जन्म पुराने घर में शिव ने ज्योति जगाई हो। जगमग चमके ये संसार, जगमग चमके ये संसार। चमक रूहानी लाए, आत्म दीप जगाए हो, आत्म दीप जगाए हो। घर घर में हो सच्ची दिवाली, घर घर में हो सच्ची दिवाली। ज्ञान प्रकाश फैलाए, आत्म दीप जगाए हो, आत्म दीप जगाए। श्रेष्ठ कर्म का खाता खोले कर अविनाशी श्रृंगार। आ रहा विक्रमाजीत संवत लेके दिवाली बहार। नवयुग आगमन की ये खुशियाँ, नवयुग आगमन की ये खुशियाँ। अनहद साज बजाए, आत्म दीप जगाए हो, आत्म दीप जगाए हो। घर घर में हो सच्ची दिवाली, घर घर में हो सच्ची दिवाली। ज्ञान प्रकाश फैलाए, आत्म दीप जगाए हो, आत्म दीप जगाए हो, आत्म दीप जगाए।
शांति, ओम शांति। सभी दीप रानियों को दीप राज शिव बाबा की दीपावली पर बहुत 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 मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। दीपराज ने तो हम सब दीप रानियों की आत्मा की ज्योति तो जगाई दी है, इसलिए सच्ची दीपावली तो बाबा कहते तुम्हारी रोज है, क्योंकि आत्म दीप जग चुका है। अब बाकी क्या पड़ा, क्या बाकी है? अभी हमें इस आत्म दीप में रोज घृत डालते रहना है। जब भी दीप जलाते हैं तो दो बातों का ध्यान रखना होता है। एक बात है एक कि घृत सदा उसमें पड़ा ही रहे, अगर घृत खत्म हो जाता है तो दीप बुझ जाएगा, और दूसरा हवा के झोंके आते हैं उनसे भी बचाना होता है। तो उसको एक शीशे के ग्लास में, शीशे के वो लैंटन में जैसे रखते हैं बंद में, ताकि हवा के झोंके ना आए, और बीच बीच में ध्यान देते रहते हैं कि घृत खत्म ना हो। तो बाबा भी कहते हैं आत्मा रूपी दीपक को हाँ ये माया के तूफान लगते हैं, तो इसीलिए बहुत सावधान रहना है, तूफानों को आने नहीं देना है, और ज्ञान का घृत सदा डालते रहना है, तो आत्मा रूपी दीपक कभी भी बुझेगा नहीं। तो ज्ञान का घृत हो और योग का वो कवर हो तो माया कभी वार नहीं करेगी और कभी भी आत्म दीपक बुझेगा नहीं। तो आज भी बाबा ने याद पर बहुत बहुत जोर दिया है। क्यों याद जरूरी है? बाबा की याद से क्या फायदे हैं, क्या प्राप्तियां हैं? वो अगर बुद्धि में रहेगी ना तो हम याद को बहुत महत्व देंगे, हम अपनी बुद्धि को कहां भी भटकाएंगे नहीं। अभी वो याद का महत्व इतना नहीं बुद्धि में है, तो इसीलिए बुद्धि भटकती रहती है, व्यर्थ संकल्प आते रहते हैं। तो इसलिए आज बाबा ने याद पर बहुत जोर दिया है। क्या क्या प्राप्ति है बाबा ने बड़ी लिस्ट बनाई है, दी है, नोट करते जाएंगे तो याद को कितना महत्व देंगे। बाबा की याद, जिसको ये गीता में का मन मना भव, ये मन मना भव का मंत्र सदा याद रहे, कभी भी भूले नहीं। आज 1/11/2024 है। मीठे बच्चे, इस समय निराकार बाप साकार में आकर तुम्हारा श्रृंगार करते हैं। अकेले नहीं, हाँ, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश कर आत्माओं का श्रृंगार करते हैं, अकेले नहीं करते हैं, ब्रह्मा के बिना नहीं करते हैं। मीठे बच्चे, इस समय निराकार बाप साकार में आकर तुम्हारा श्रृंगार करते हैं, इसलिए निराकार के साथ साकार भी दिखाया है। किस रूप में दिखाया है? शिव का रथ, हाँ, नंदीगण, तो नंदीगण भी दिखाया है। हर जहां भी शिव होगा वहां नंदीगण जरूर होगा। तो शिव बाबा अकेला नहीं है, नंदीगण उसके सदा साथ है। तो और दूसरा फिर क्या यादगार है उनका? हाँ, दूसरा भी कोई यादगार है शिव का, अकेला नहीं है। गौमुख भी दिखाते ना उसके, ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान देते हैं, तो वो माँ भी हो गई, नंदीगण तो है लेकिन माँ भी हो गई जिसके द्वारा रचना रचते हैं। तो निराकार और साकार दोनों ही है। कल भी वरदान में सुना ना, दिया क्यों जलाते हैं, ये दिया निराकार की यादगार है, और फिर लक्ष्मी का पूजन ये साकार की यादगार है। तो निराकार और साकार ये दोनों साथ साथ है। अकेला निराकार भी कुछ नहीं कर सकता, साकार भी निराकार के बिना क्या करेगा। ब्रह्मा बाबा को भी रथ बनाया शिव बाबा ने, तो रथ न होता तो शिव बाबा भी क्या करते। तो आज बाबा ने कहा बाबा अकेले नहीं है, ब्रह्मा के साथ है, अभी भी है, अभी भी हम बच्चों की पालना कर रहे हैं, हमारा श्रृंगार कर रहे हैं। तो मीठे बच्चे, इस समय निराकार बाप साकार में आकर तुम्हारा श्रृंगार करते हैं, अकेला नहीं करते। प्रश्न है, तुम बच्चे याद की यात्रा में क्यों बैठते हो? अब गिनाओ याद की यात्रा के फायदे। तो इसलिए हम याद में बैठते हैं। तो उत्तर में मुख्य चार बातें हैं, मुरली में तो और भी है। तो क्यों तुम याद की यात्रा में बैठते हो? उत्तर है, पहला, क्योंकि तुम जानते हो कि इस याद से ही हमें बहुत बड़ी आयु मिलती है। आयु हमारी बहुत बड़ी हो जाएगी इस याद की शक्ति से ही, वहां इतनी आयु हमारी बढ़ती है। हम निरोगी बनते हैं। दूसरा, याद करने से हमारे पाप कटते हैं। लिस्ट बहुत बड़ी बन सकती है याद से क्या क्या फायदे हैं। एक तो आयु बड़ी हो जाती है, निरोगी बन जाते हैं, पाप कटते हैं, हम सच्चा सोना बन जाते हैं, आत्मा से रजो तमो की खाद निकल जाती है, वो कंचन बन जाती है आत्मा। तीसरा, याद से ही तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। चौथा, तुम्हारा श्रृंगार होगा। पांचवा, तुम बहुत धनवान बन जाएंगे। ये याद ही तुम्हें पद्मा पदम भाग्यशाली बनाती है। कितनी महिमा है बाबा की याद की। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझा रहे हैं, यहां बैठ तुम क्या करते हो? क्या करते हो भाई यहां बैठकर? ऐसे नहीं सिर्फ शांति में बैठे हो। कोई नया आकर देखे कि ये तो सब शांति में बैठे हैं, लेकिन केवल शांति में नहीं बैठे, शांति में तो बैठे ही हैं, पर अंदर क्या चल रहा है? तो ऐसे नहीं कि सिर्फ शांति में बैठे हो। बाबा ने बहुत ऊंची बात कही है, अर्थ सहित ज्ञानमय अवस्था में बैठे हो। शांति में ऐसे बैठना माना एकदम शून्य स्थिति, लेकिन तुम बच्चे अर्थ सहित ज्ञानमय अवस्था में बैठे हो। तुम बच्चों को ज्ञान है बाप को हम क्यों याद करते हैं। बाप हमको बहुत बड़ी आयु देते हैं। बाप को याद करने से हमारे पाप कट जाएंगे, हम सच्चा सोना सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम्हारा कितना श्रृंगार होता है? छोड़ा ना, श्रृंगार हो रहा है इस समय। तुम्हारा कितना श्रृंगार होता है? ये रत्नों का श्रृंगार, ज्ञान रत्नों का, याद की यात्रा का श्रृंगार यहाँ करते। फिर बाबा कहते हैं तुम्हारी आयु बड़ी हो जाएगी, बहुत सुंदर कंचन काया मिल जाएगी। तुम्हारा कितना श्रृंगार होता है? तुम्हारी आयु बड़ी हो जाएगी, आत्मा कंचन हो जाएगी। अब आत्मा में खाद पड़ी हुई है, याद की यात्रा से वो सब खाद जो रजो तमो की पड़ी है वो सब निकल जाएगी। तो रजो तमो कि खाद है इसको बाबा किचरा भी कहते हैं, जैन बाबा कई शब्दों से उसको कहते हैं। तो खाद जो रजो तमो की पड़ी है वो सब निकल जाएगी, इतना तुमको फायदा होता है। फिर आयु बड़ी हो जाएगी, तुम स्वर्ग के निवासी बन जाएंगे और बहुत धनवान बनेंगे। नशा चढ़ता है, भविष्य कितना उज्जवल होगा हमारा, और बहुत धनवान बनेंगे। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। इसलिए बाप कहते हैं मन मना भव मामेकम याद करो, इतना महत्व दो बाबा की याद को। मामेकम मन मना भव मामेकम याद करो, कोई देहधारी के लिए नहीं कहते हैं, देहधारी को याद करो उसके लिए नहीं कहते हैं। शिव बाबा निराकार, निराकार बन निराकार को याद करो। भगवान ने यही कहा मन को मेरे में रखो, मुझे एक को याद करो। बाप को तो शरीर है नहीं, तुम्हारी आत्मा भी निराकार थी, फिर पुनर्जन्म में आते आते घर में जब थी निराकार रूप में परमधाम में तो बहुत पावन थी, फिर पुनर्जन्म में आते आते पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बन गई है। अब फिर कंचन बनना है, कंचन माना सोना, सोना को कंचन कहते, तो फिर कंचन बनना है। अभी तुम पवित्र बन रहे हो, पानी के स्नान तो जन्म जन्मांतर किए, समझा हम इससे पावन बनेंगे, गंगा स्नान करने से हम पावन बन जाएंगे ऐसे समझा, परंतु पावन बनने बदले और ही पतित बन नुकसान में पड़े हो। गंगा स्नान करके आए फिर देखो लड़ना झगड़ना चालू कर देंगे, तो पावन क्या बने, फिर पतित तो रहे क्योंकि लड़ते झगड़ते। तो बाबा कहते हैं परंतु पावन बनने बदले और ही पतित बन नुकसान में पड़े हो, क्योंकि ये है ही झूठी माया। झूठ बोलने के संस्कार है सबके, झूठ बोलने के संस्कार है सबके, कलयुग की दुनिया में और क्या होगा। बाप कहते हैं मैं तुमको पावन बनाकर जाता हूँ, फिर तुमको पतित कौन बनाता है। अभी तुम फील करते हो ना किसने हमको पतित बनाया, कैसे हम इतने पतित बन गए, फील करते हो ना, कितना गंगा स्नान करते आए परंतु पावन तो बने नहीं। पावन बनकर तो पावन दुनिया में जाना पड़े, पावन बन गए तो इस पतित दुनिया में रहेंगे थोड़ी, फिर तो पावन दुनिया चाहिए, तो पावन दुनिया में जाना पड़े। शांति धाम और सुख धाम है पावन धाम, ये तो है ही रावण की दुनिया, इसको दुख धाम कहा जाता है। ये तो सहज समझने की बात है, ये दुख धाम है, ये कोई सुख धाम या स्वर्ग नहीं है, तो ये सहज समझने की बात है ना, इसमें कोई मुश्किल आती नहीं ये बात समझने में, न किसको सुनाने में मुश्किल आता है, न समझने में मुश्किल आता है, न सुनाने में मुश्किल आता है। जब कोई मिले तो सिर्फ ये बोलो अपने को आत्मा समझ बेहद के बाप को याद करो। आत्माओं का बाप है परम पिता परमात्मा शिव। हर एक के शरीर का तो अलग अलग बाप होता है, आत्माओं का तो एक ही बाप है। कितना अच्छी रीति समझाते हैं और फिर हिंदी में ही समझाते हैं, कोई और भाषा नहीं है जो हम समझे ही नहीं, हिंदी में ही समझाते हैं, हिंदी भाषा ही मुख्य है। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली इन देवी देवताओं को कहेंगे ना, ये कितने भाग्यशाली है, देवी देवताएं कितने भाग्यशाली है, ये किसको भी पता नहीं है कि ये स्वर्ग के मालिक कैसे बने। अभी तुमको बाप सुना रहे हैं कैसे बने ये स्वर्ग के मालिक। इस सहज योग द्वारा इस पुरुषोत्तम संगम पर ही ये बनते हैं। अभी है पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम। हम सब कहाँ है, पुरानी दुनिया और नई दुनिया के संगम पर। फिर तुम नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे। अब बाप सिर्फ कहते हैं दो अक्षर अर्थ सहित याद करो, दो अक्षर मनमना भव मामे कम, ये इनका अर्थ बाबा बताते हैं, उस अर्थ सहित याद करो। गीता में है मनमना भव, अक्षर तो पढ़ते हैं परंतु अर्थ बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि अगर समझो समझते भी हैं कि मन को मेरे में लगाओ तो फिर किस में मन लगाना है, श्री कृष्ण में मन लगाना है, यही समझेंगे भाई श्री कृष्ण ने कहा मन मेरे में लगाओ। तो अक्षर तो पढ़ते हैं परंतु अर्थ बिल्कुल नहीं जानते। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो क्योंकि मैं ही पतित पावन हूँ, और कोई भी पतित पावन हूँ ऐसे कह न सके। किसको हिम्मत आएगी ये कहने कि मैं पतित पावन हूँ मुझे याद करो तो पावन बन जाओगे, भगवान के सिवा और कोई नहीं कह सकता। और कोई ऐसे कह न सके मैं पतित पावन हूँ। बाप ही कहते हैं मुझे याद करने से तुम पावन बन पावन दुनिया में चले जाएंगे। पहले पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बने हो, अब 84 जन्म बाद फिर तुम नई दुनिया में देवता बनते हो। 84 जन्म लिए देवता थे, अब अंत में आ गए, अभी फिर तुम 84 जन्म भोग कर अब अंत में आए हो, फिर देवता बनना है। तो अब 84 जन्म बाद फिर तुम नई दुनिया में देवता बनते हो। रचयिता और रचना दोनों को तुम जान गए हो। दोनों को जानने से क्या बन गए हो? रचयिता और रचना को जानने से दोनों को तो क्या बन गए हो? तुम अभी आस्तिक बन गए हो। आस्तिक किसको बाबा कहते हैं? जो रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जाने। भगवान को जानते ही नहीं है तो कहते नास्तिक है। कोई कहते भाई मानते नहीं है इसलिए नास्तिक, पर जानते नहीं है तो भी नास्तिक ही है। बाबा कहते अभी तुम आस्तिक बन गए हो, आगे जन्म जन्मांतर तुम नास्तिक थे, नहीं जानते थे रचयिता रचना के आदि मध्य अंत को। ये बात जो बाप सुनाते हैं और कोई जानते ही नहीं। कहां भी जाओ कोई भी तुमको ये बातें नहीं सुनाएंगे। बाबा कई बार चैलेंज देते जाओ सारी दुनिया घुमाओ, ऐसा ज्ञान तुमको कोई नहीं देगा सिवाय भगवान के, इस समय बाप ही देते हैं। कहां भी जाओ कोई भी तुमको ये बातें नहीं सुनाएंगे। अभी दोनों ही बाप तुम्हारा श्रृंगार कर रहे हैं, केवल शिव बाबा नहीं ब्रह्मा बाबा भी कर रहे हैं ना, क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कैसे करेंगे श्रृंगार, परम धाम में बैठे थोड़ी करेंगे। दोनों ही बाप तुम्हारा श्रृंगार कर रहे हैं। पहले तो बाप अकेला था, परम धाम में रहता था, शरीर बिगड़ था, ऊपर बैठ तुम्हारा श्रृंगार कर न सके। तो कहते हैं ऊपर बैठ श्रृंगार नहीं कर सकते, नीचे आना पड़ता है। तो ब्रह्मा तन में आया तो क्या कहावत है, बहुत बारह सिंधी में कहा है, जैसे एक और एक मिल गए तो 11 हो गया ना, हिंदी में कहते एक और एक 11, तो 2 हो गए तो 11, पर सिंधी में कहा जाता है बारह, माना 2 बन गए तो 12 हो गए। तो कहते हैं बारह अर्थात 1 और 2 मिलकर 12 होते हैं। बाकी प्रेरणा व शक्ति आदि की बात नहीं है, ऊपर से नहीं प्रेरणा करेंगे और आत्माओं का श्रृंगार हो जाएगा, ज्योति जग जाएगी, नहीं आना पड़ता है उनको। बाकी प्रेरणा व शक्ति आदि की बात नहीं है, ऊपर से प्रेरणा द्वारा तो मिल न सके शक्ति। निराकार जब साकार शरीर का आधार लेते हैं तब तुम्हारा श्रृंगार करते हैं। समझते भी हैं बाबा हमको सुख धाम में ले जाते हैं, ड्रामा के प्लान अनुसार बाबा बंधायमान है, सृष्टि पर आना ये भी उनके लिए बंधायमान है, आना ही पड़ेगा। और फिर बाबा कहते उनको ये ड्यूटी मिली हुई है, ड्रामा में उनकी ये ड्यूटी है आकर के पावन बनाने की। हर 5,000 वर्ष बाद आते हैं तुम बच्चों के लिए इस योग बल से तुम कितने कंचन बनते हो। आत्मा और काया दोनों कंचन बनती है, केवल आत्मा नहीं पावन सोना बनती है, शरीर भी कंचन बन जाता है। फिर छीछी बनते हो, पहले कंचन बनते हो फिर छीछी बनते हो। अभी तुम साक्षात्कार करते हो इस पुरुषार्थ से हम ऐसा श्रृंगारा हुआ बनेंगे, लक्ष्मी नारायण जैसा श्रृंगारा हुआ बनेंगे। 16 श्रृंगार दिखाते हैं, लक्ष्मी के 16 श्रृंगार, ऊपर से लेके पैरों तक 16 श्रृंगार है। हाँ, एक बार बताया था जगदीश भाई ने इस पर एक एक का श्रृंगार का भी अर्थ बताया था, इसलिए 16 श्रृंगार कहते हैं। तो पूरे ही श्रृंगारे हुए। तो बाबा कहते हैं, इस पुरुषार्थ से हम ऐसा श्रृंगारा हुआ बनेंगे, वहां क्रिमिनल आई होती नहीं, सतयुग में क्रिमिनल आई होती नहीं, तो भी अंग सब ढके हुए होते हैं। क्रिमिनल आई नहीं है तो भी अंग सब ढके हुए होते हैं। द्वापर कलयुग में तो फिर क्या, क्रिमिनल आई शुरू हो गई ना तो घूंघट निकला, फिर वो कैसे, हाँ बुरका निकला, ताकि किसी की क्रिमिनल आई ना पड़े, ढकना है स्त्री को ढकना है। लेकिन सतयुग में जरूरत ही नहीं है, लक्ष्मी को कोई घूंघट है क्या? लेकिन क्यों नहीं है, क्योंकि वहां किसी की क्रिमिनल आई ही नहीं है, किसी की दृष्टि कभी बुरी जाती ही नहीं है, या बुरी दृष्टि जाती है तब उनको ढकते हैं। तो बाबा कहते हैं इन लक्ष्मी नारायण को, हाँ इस पुरुषार्थ से हम ऐसा श्रृंगारा हुआ बनेंगे, वहां क्रिमिनल आई होती नहीं तो भी अंग सब ढके हुए होते हैं। लक्ष्मी की ड्रेस देखेंगे कैसे ढकी हुई, बाबा ने भी हम लोगों को ऐसे ही ड्रेस दी है, बिल्कुल ढकी हुई। यहाँ तो देखो छीछी बातें रावण राज्य में सीखते हैं। इन लक्ष्मी नारायण को की ड्रेस देखो कितनी अच्छी है। यहाँ सब है कलयुग में देह अभिमानी, उन्हों को देह अभिमानी नहीं कहेंगे, देवताओं को देह अभिमानी नहीं कहेंगे, उन्हों की नेचुरल ब्यूटी है। बाप तुमको ऐसा नेचुरल ब्यूटीफुल बनाते हैं। आजकल तो सच्चा जेवर कोई पहन भी नहीं सकता है, डर लगता है ना, सच्चा जेवर पहनेंगे तो आज आते हैं चोर। वो एक बहन का मिसाल है ना, अमृत वेले वो योग करने के लिए जा रही थी सेंटर पर, नसीकी घर था, तो रास्ते पर जा रही थी तो बैज पड़ा हुआ था, तो किसी कोई चोर पकड़ खड़ा हुआ, ये सोना है तुम्हारा, निकाल के दो, ये निकालो। अब उसने कहा ठीक है ले लो, ये तो भगवान का फोटो है, देवी देवता का फोटो है, अच्छा है आपका कल्याण हो जाएगा, लेकिन आपको मैं बताती हूँ ये सोने का नहीं है, सोने का नहीं है ले लो। ऐसे कह के उनको दे दिया वापस, लेकिन बड़े प्यार से उसको समझाने लगी ये क्या है, इसका अर्थ बताया, फिर बताया ये सोने का नहीं है, देखने में तो लगता है जैसे सोने का है। तो बाबा कहते हैं आजकल तो सच्चा जेवर कोई पहन भी नहीं सकता है, कोई पहने तो उनको ही लूट जाएंगे। वहां तो ऐसी कोई बात ही नहीं है, कोई लुटेरा नहीं आएगा और कहेगा निकालो सब, कलयुग में तो कितना होता है, वहां तो ऐसे कोई बात ही नहीं है। ऐसा बाप तुमको मिला है, इन बिगड़ तो तुम बन न सको, इतना ऊंचा ऐसे बाप द्वारा ही तुम बनते हो, तो इनके बिगड़ तो तुम बन न सको इतना ऊंचा। बहुत कहते हैं हम तो डायरेक्ट शिव बाबा से लेते हैं, हम तो डायरेक्ट शिव बाबा से लेते हैं, परंतु वो देंगे कैसे। कोई कहे मुझे ब्रह्मा से कोई लेना देना नहीं है, हम तो डायरेक्ट शिव बाबा से लेंगे, लेकिन शिव बाबा भी देंगे कैसे, थ्रू तो चाहिए ना, मीडियम तो चाहिए, तो वो भी देंगे कैसे। भल कोशिश करके देखो, डायरेक्ट मांगो, घर बैठ जाओ और कहो मैं तो शिव बाबा को सारा दिन याद करता हूँ, कर ही नहीं सकोगे। जब तक सेंटर पर नहीं आएंगे, यहाँ नहीं ज्ञान सुनेंगे, संगठन में नहीं होंगे, बाबा की याद आएगी नहीं। तो भल कोशिश करके देखो, डायरेक्ट मांगो, देखो मिलता है। ऐसे बहुत कहते हैं हम तो शिव बाबा से वर्षा लेंगे, ब्रह्मा से पूछने की भी क्या दरकार है, नहीं चाहिए, ब्रह्मा बाबा की कोई जरूरत नहीं है, शिव बाबा हमारे लिए बस है। शिव बाबा प्रेरणा से कुछ दे देंगे, हाँ कुछ देंगे शिव बाबा। अच्छे अच्छे पुराने बच्चे, उनको भी माया ऐसे चक पहन लेती है, काट लेती है। सिंधी शब्द है चक पहना, यानी जैसे दांतों से काटना, चक पहना तो काट लेती है। एक तो मानते हैं, हाँ एक को मानते हैं, परंतु तो एक क्या करेंगे, ब्रह्मा बिना शिव बाबा भी क्या करेंगे, हाँ तो इसीलिए एक को मानेंगे, और वो भी केवल शिव बाबा को ही मानेंगे तो क्या मिलेगा। एक को मानते हैं परंतु एक क्या करेंगे, तो बाप कहते हैं मैं एक कैसे आऊं, हूं एक लेकिन आऊं, मुझे तो आना है, बच्चों से मिलना है, मुख बिगर बात कैसे करूं, इसलिए मुख भी चाहिए, रथ भी चाहिए, और रथ में ही मुख है, तो इसीलिए नंदीगण का भी गायन है, और फिर जो जो भी अभिषेक करते हैं शिवलिंग का, शिव का, वो जो पानी है, दूध है, जो है वो फिर कहाँ से निकलता है, गौमुख से निकलता है, तो वो भी एक यादगार है। तो बाबा कहते हैं मुख बिगर बात कैसे कर सकूं, मुख का तो गायन है ना, गौमुख से अमृत लेने के लिए कितना धक्का खाते हैं, फिर श्रीनाथ द्वारे पर जाकर दर्शन करते हैं, परंतु उनका दर्शन करने से क्या होगा, कोई भी मूर्ति है, चलो दर्शन करने जाते हैं, तो उस क्या होगा उस उसका दर्शन करने से, उसको कहा जाता है भूत पूजा, बुत पूजा, बुत माना शरीर है केवल, तो है तो चलो मिट्टी का या पत्थर का जो भी होगा, उसमें आत्मा तो है नहीं, बाकी पांच तत्वों का पुतला बना हुआ है, तो गोया माया को याद करना हो गया, पंच तत्वों का ये शरीर है या जो वस्तु से भी वो मूर्ति बनी है, तो वो भी तो जैसे पंच तत्वों की है, तो जैसे गोया पंच तत्वों को याद करना, पुतला को याद करना, ये जैसे माया को याद करना हुआ। पांच तत्व, पांच तत्व प्रकृति है ना, उनको याद करने से क्या होगा, प्रकृति का आधार तो सबको है, परंतु वहां है सतो प्रधान प्रकृति, देवताओं को भी प्रकृति का आधार है, शरीर है, लेकिन वो शरीर सतो प्रधान प्रकृति का है, ये है तमो प्रधान प्रकृति। बाप को सतो प्रधान प्रकृति का आधार कभी नहीं लेना पड़ता, जरूरत ही नहीं है सतो प्रधान प्रकृति का आधार ले शिव बाबा, जब सब तमो प्रधान बन जाते तभी उनको आना है, तो उस समय तो है ही तमो प्रधान प्रकृति के शरीर, तो इसीलिए बाप को सतो प्रधान प्रकृति का आधार कभी नहीं लेना पड़ता। यहाँ तो सतो प्रधान प्रकृति मिल भी न सके, ये जो भी साधु संत है, बाप कहते हैं इन सब का उद्धार मुझे करना पड़ता है, मैं निर्वृत्ति मार्ग में आता ही नहीं हूँ, ये तो है ही प्रवृत्ति मार्ग, सबको कहता हूँ पवित्र बनो, वहां तो नाम रूप आदि सब बदल जाता है, सत्युग में ये नाम रूप थोड़ी होगा, सब बदल जाता है। तो बाप समझाते हैं देखो ये नाटक कैसा बना हुआ है, एक के फीचर्स न मिले दूसरे से, इतने करोड़ों हैं, सबके फीचर्स अलग अलग, कितना भी कोई कुछ करे तो भी एक के फीचर दूसरे से मिल न सके, कॉपी करे उस जैसी शक्ल बनाए तो भी नहीं हो सकता है, तो भी एक के फीचर दूसरे से मिल न सके, इसको कहा जाता है कुदरत, वंडर। स्वर्ग को वंडर कहा जाता है ना, कितना शोभनीक है सत्युग, कितना सुंदर है, कितना वंडर है वो सत्युग, तो बाबा कैसे भेंट कर रहे हैं, माया के सात वंडर और बाप का एक वंडर सत्युग, अगर दोनों को पलड़े में रखो, एक तरफ सात वंडर्स इस कलयुगी दुनिया के और दूसरी तरफ स्वर्ग पलड़े पर, तो बाबा कहते हैं वो सात वंडर्स तराजू के एक तरफ रखो और ये एक वंडर दूसरे तरफ में रखो तो भी भारी कौन सा होगा, कौन सा भारी होगा पलड़ा, स्वर्ग का पलड़ा भारी होगा, तो ये भी भारी हो जाएगा। फिर दूसरा बाबा ने भेंट किए, एक तरफ है ज्ञान और दूसरे तरफ है भक्ति, दोनों अलग पलड़े में रखो, कौन सा पलड़ा भारी होगा, ज्ञान या भक्ति, ज्ञान। तो बाबा कहते एक तरफ ज्ञान एक तरफ भक्ति को रखो तो ज्ञान का तरफ बहुत भारी हो जाएगा, तरावती माल है ना, आत्मा की, आत्मा को शक्ति मिलती है, तो ज्ञान का तरफ बहुत भारी हो जाएगा। अभी तुम समझते हो भक्ति सिखलाने वाले तो ढेर है पर ज्ञान देने वाला तो एक ही बाप है, तो बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं, श्रृंगार करते हैं, बाप कहते हैं पवित्र बनो, तो कहते हैं हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे श्रृंगार करने आते हैं, फिर कहते हैं बच्चे पवित्र बनो, तो बच्चे क्या कहते हैं, हाँ, कोई बच्चे तो फट से कहते हैं हाँ बाबा हम पवित्र जरूर बनेंगे, लेकिन कई बच्चे क्या कहते हैं, नहीं हम तो चीची बनेंगे, ऐसे भी होंगे ना, उनको कोर्स कराते हैं इतना ऊंचा ज्ञान देते हैं फिर अभी फिर उनको कहते हैं पवित्र बन, नहीं 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 हम ये नहीं बन सकते, हम पवित्र नहीं रह सकते, तो नहीं नहीं हम तो छीछी बनेंगे। तो गरुड़ पुराण में भी विषय वैतरणी नदी दिखाते हैं, सात प्रकार का नर्क दिखाते हैं, गरुड़ पुराण में लिखा है, उसमें एक नर्क का नाम है विषय वैतरणी नदी, तो गरुड़ पुराण में भी विषय वैतरणी नदी दिखाते हैं ना, उसमें क्या दिखाते हैं, नदी में बिच्छू टिंडन ऐसे, हाँ, सारे ये जीव जंतु काटने वाले, तो बिच्छू टिंडन सर्प आदि सब एक दो को काटते रहते हैं। तो बाप कहते हैं तुम कितने निधन के बन गए हो, धनी धोनी है ही नहीं, लड़ते रहते हो आपस में, तुम बच्चों को ही बाप समझाते हैं, बाहर में कोई भी ऐसा सीधा कहो तो बिगड़ जाए, सब निधन के ऐसे कहो तो बिगड़ जाए, बड़ा युक्ति से समझाना होता है, सीधी सीधा नहीं किसको कहना होता है, हाँ किसको कहो तुम पति तो लड़ना चालू कर देगा, हाँ तुम पापी हो तो लड़ना शुरू करेगा, बोले खुद कहते हैं मंदिर में आरती में कहते हैं हाँ मैं मूर्ख खलक पापी कामी पापी, खुद को कहेंगे पर दूसरा कोई कहे तो लड़ना शुरू कर देंगे। तो बाबा कहते हैं बाहर में कोई को ऐसा सीधा कहो तो बिगड़ जाए, बड़ा युक्ति से समझाना होता है, कई बच्चों में बातचीत करने का भी अकल नहीं रहता, बच्चों पर बात आए, बच्चे भी आपस में बात करते और बातचीत करने का भी अकल नहीं है, कैसे किससे बात करनी चाहिए, छोटे बच्चे एकदम इनोसेंट होते हैं इसलिए उनको महात्मा कहा जाता है, छोटे बच्चे कितने प्यारे लगते हैं, लेकिन बड़ा होकर के कोई ऐसे कुछ कह दे तो बुरा लगेगा, उनको महात्मा कहा जाता है, कहां श्री कृष्ण महात्मा कहां ये सन्यासी निवृत्ति मार्ग वाले महात्मा कहलाते हैं, वो है प्रवृत्ति मार्ग, वो कभी भ्रष्टाचार से पैदा नहीं होते देवताएं, उनको कहते ही हैं श्रेष्ठाचारी, अभी तुम श्रेष्ठाचारी बन रहे हो, बच्चे जानते हैं यहाँ बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, ये जरूर श्रृंगार अच्छा ही करेंगे, दोनों मिल करके बहुत अच्छा श्रृंगार करते हैं, श्रृंगार हो रहा है ना सबका, बाबा की मुरली से याद से श्रृंगार होता है, ये जरूर श्रृंगार अच्छा ही करेंगे, सबकी दिल होगी ना, सबकी दिल होगी ना, जिन्होंने इन बच्चों को ऐसा श्रृंगारा श्रृंगार किया, सबकी दिल होगी ना, जिन्होंने इन बच्चों को ऐसा श्रृंगार कराया है तो हम क्यों ना उनके पास जाएं, शिव बाबा बाप दादा ब्रह्मा बाबा, तो बाप दादा ने हमारा श्रृंगार किया है तो कई कहेंगे इतने अच्छे हैं, तो जिन्होंने इनका इतना श्रृंगार किया उनके पास क्यों न जाएं, तो क्यों न हम उनके पास जाएं, इसीलिए तुम यहाँ आते हो रिफ्रेश होने मधुबन में, दिल दिल कशिश करती है मधुबन जाएं मधुबन जाएं, बाप के पास आने की दिल कशिश करती है, दिल होती है। जिनको पूरा निश्चय होता है वो तो कहेंगे चाहे मारो चाहे कुछ भी करो, हम कभी भी साथ नहीं छोड़ेंगे। कोई तो बिगर कारण भी छोड़ देते हैं, वैरायटी बच्चे हैं बाबा के, कोई तो बिगर कारण भी छोड़ देते हैं। ये भी ड्रामा का खेल बना हुआ है। फारकती व डाइवोर्स दे देते हैं। फारकती बाप और बेटे के बीच में होती है, बेटा छोड़ देता है बाप को, फारकती दे देता है। डाइवोर्स पति पत्नी के बीच में होती है, होता है। तो फारकती व डाइवोर्स दे देते हैं। तो बाप जानते हैं ये रावण के वंश के हैं। कल्प कल्प ऐसा होता है, कोई फिर आ जाते हैं, छोड़ के चले गए, फिर यहाँ वहां घूम करके वापस आ गए, क्योंकि ऐसा ज्ञान तो बाबा के सिवा कोई दे नहीं सकता। फिर कोई वापस भी आ जाते हैं। बाबा समझाते हैं हाथ छोड़ने से पद कम हो जाता है। अगर छोड़ के चले गए फिर भले वापस भी आए लेकिन फिर भी पद कम हो जाएगा, अखंड तो नहीं रहे ना, हड्डी टूट गई। अब हड्डी टूट गई भले कितनी भी जुड़ जाए फिर भी वो ओरिजिनल हड्डी तो नहीं रही ना टूट। कभी जैसे ठंड लगेगी तो दर्द होगा क्योंकि वहां टूटी थी हड्डी, भले जुड़ भी जाए। तो इसीलिए बाबा कहते हैं हाथ छोड़ने से पद तो कम ही हो जाता है, भले वापस भी आ जाए फिर पुरुषार्थ भी करे लेकिन खंडित तो हो गया ना। सम्मुख आते हैं, प्रतिज्ञा भी करते हैं, हम ऐसे बाप को कभी नहीं छोड़ेंगे, परंतु माया रावण भी कम नहीं है, झट अपनी तरफ खींच लेती है। फिर सम्मुख आते हैं तो उनको समझाया जाता है, बाप लाठी थोड़ी लगाएंगे, समझाएंगे ना भाई तुमने ऐसा किया तो अभी तो वो जो अगर बाबा के सदा होते और कोई दाग नहीं लगता तो तुम तो बहुत उच्च पद पाते, अभी तो बाबा कहते हैं कि थोड़ा हड्डी तो टूटी है पजवले जुड़ गई है, चलो बाबा के बन जा, पर लाठी तो नहीं मारेंगे ना, क्यों तुमने ऐसा किया, चलो फिर से आ जाओ बाबा माफ कर देंगे। परंतु बाबा कहते हैं बाप लाठी थोड़ी लगाएंगे, बाप तो फिर भी प्यार से ही समझाएंगे, तुमको माया ग्रह खा जाता, अच्छा हुआ जो बचकर आ गए नहीं तो पूरा हप कर लेता, फिर भी तुम बचकर आ गए। घायल होंगे तो भी पद तो कम हो जाएगा ना, घायल किया भले मारा नहीं तो भी बाबा कहते पद तो कम हो जाएगा ना। जो सदैव एक रस ही रहेंगे वो कभी हटेंगे नहीं, कभी हाथ नहीं छोड़ेंगे। यहाँ से बाप को छोड़कर मर कर माया रावण के बनते हैं तो उनको माया और ही जोर से खाएगी। सुना हा? अगर बन गए माया के तो माया और ही जोर से खा जाएगी। बाप कहते हैं तुमको कितना श्रृंगार करते हैं, समझाया जाता है अच्छे होकर चलो, किसको दुख नहीं दो, ब्लड से भी लिख कर देते हैं बाबा हम हाँ आपके ही रहेंगे, फिर क्या होता है फिर वैसे के वैसे बन जाते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है, कान नाक से पकड़कर बहुत तड़पाती है। अब किसी को नाक से पकड़ो तो तड़पेगा ना, फिर कान से भी पकड़ो तो दर्द तो होगा ही ना। तो नाक कान से पकड़कर बहुत तड़पाती है। अब तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं तो क्रिमिनल दृष्टि कभी नहीं जानी चाहिए, विश्व का मालिक बनना है तो कुछ मेहनत भी तो करनी पड़ेगी ना, ऐसे ही थोड़ी बन जाएंगे विश्व का मालिक। अब तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों तमो प्रधान है, खाद पड़ गई है, इस खाद को भस्म करने के लिए बाप कहते हैं मुझे याद करो। तुम बाप को याद नहीं कर सकते हो, फिर बाबा कहते लजा नहीं आती है, कहते बाबा को याद ही नहीं कर सकते लजा नहीं आती, ऐसे कहते भी हो है ना। वो मिसाल देते हैं, एक बार अव्यक बाप दादा के सामने एक व्यक्ति आया, मतलब एक भाई आया और बाबा को कहता है बाबा मुझे याद नहीं ठहरती है, मैं आपको याद नहीं कर सकता हूँ। ये सबसे पहली इंसल्ट तो यही है, किसी को कहो हम आपको याद ही नहीं कर सकते हैं, कितनी इंसल्ट है उसकी। पर बाबा को भी कह दिया, बाबा बाबा आपकी याद नहीं आती है, या बाबा को हम याद नहीं कर सकते ऐसे काम। तो बाबा मुस्कुराए और बाबा ने उनको दृष्टि दी, बहुत पावरफुल दृष्टि दी, बहुत पावरफुल दृष्टि दी। फिर थोड़ी जैसे एक मिनट तक पावरफुल दृष्टि दी और वो बाबा को देखता रहा एकदम जैसे पिघल गया। फिर बाबा ने उनसे पूछा, अभी अभी याद ठहरी? बाबा, हाँ अभी तो बहुत अच्छी याद हुई। तो बाबा ने कहा, अभी कैसे याद हुई? अब तो कहते हो हाँ। उसने कहा, नहीं बाबा याद ठहरती नहीं है, अभी कैसे याद ठहरी? तो उसने जवाब दिया, बाबा आप सामने थे ना, आप सामने थे। तो बाबा ने कहा, सदा ऐसे ही समझो सदा ऐसे ही समझो कि बाबा मेरे सामने है। अब याद करना माना क्या, जैसे उसको सामने लाना ना, तो सदा यही सोचो बाबा मेरे सामने है, तो फिर याद तो ठहर जाएगी, क्यों नहीं ठहरेगी याद। तो देखो बाबा कहते हैं, तो बाप को तुम याद नहीं कर सकते हो, हाँ लजा नहीं आती है? याद नहीं करेंगे तो माया के भूत तुमको हक कर लेंगे। तुम कितना छीछी बन गए हो, रावण राज्य में एक भी ऐसा नहीं जो विकार से पैदा न हुआ हो, योग बल से पैदा हुआ हो, ऐसा कोई भी नहीं है कलयुगी दुनिया में। वहां इस विकार का नाम नहीं, रावण ही नहीं। रावण राज्य होता ही है द्वापुर से, पावन बनाने वाला एक ही बाप है। तो बाप कहते हैं, बच्चे ये एक जन्म ही पवित्र बनना है, फिर तो विकार की बात ही नहीं होगी। वहां तो विकार होगा ही नहीं सत्युग में, सिर्फ एक जन्म पवित्र बनो, वो है ही निर्विकारी दुनिया। तुम जानते हो, हाँ क्या जानते हो, ये पवित्र देवी देवताएं थे, फिर 84 जन्म लेते लेते नीचे आए हैं, अब है पतित। तब पुकारते हैं, शिव बाबा हमको इस पतित दुनिया से छुड़ाओ। अभी जब बाप आए हैं तब तुमको समझ पड़ी है, समझ मिल गई ना, बाबा आए हैं तो सारा ज्ञान दे दिया बाबा ने कि ये पतित काम है, विकारी बनना ये पतित काम है। आगे नहीं समझते थे क्योंकि तुम रावण राज्य में थे। अब बाप कहते हैं, सुख धाम चलना है तो छीछी बनना छोड़ो। कितना प्यार से बाबा कहते हैं, छीछी बनना छोड़ो, अगर पावन सुख धाम में चलना है तो। आधा कल तुम छीछी बने हो, सिर पर पापों का बहुत बोझा है और तुमने गाली भी बहुत दी है, उससे भी पाप बन गया ना, सर्वव्यापी कहना, कुत्ते बिल्ली में कहना, ये भी सिर्फ पाप बन गया, गाली भी बहुत दी है। बाप को गाली देने से बहुत पाप चढ़ जाते हैं, ये भी ड्रामा में पार्ट है। तुम्हारी आत्मा को जो 84 जन्मों का पार्ट मिला हुआ है वो बजना ही है, हर एक को अपना पार्ट बजाना है, फिर तुम रोते क्यों? जब वो आत्मा चली गई, उसका इतना ही पार्ट था, आगे इसको नया पार्ट मिलना है, तो बाबा कहते रोते ही फिर क्यों हो? सतयुग में कोई रोता नहीं है, फिर ज्ञान की दशा पूरी होती है तो वही रोना पीटना शुरू हो जाता है। सतयुग में ज्ञान की दशा है तो कोई रोता नहीं है, तो द्वापर युग से रोना पीटना शुरू हो जाता है। मोहजीत की कथा भी तुमने सुनी है, वो राजा था और कैसे उसकी परीक्षा ली गई, उसको कहा तुम्हारा बेटा मर गया, तो भी उसने कहा ठीक है उतना ही पार्ट होगा। फिर माँ से कहा, माँ ने भी यही कहा, भाई बहनों ने भी यही कहा, सबने यही कहा, कोई रोया नहीं। मोहजीत राजा की कहानी बताते हैं, तो बाबा कहते हैं मोहजीत की कथा भी तुमने सुनी है, ये तो एक झूठा दृष्टांत बनाया, क्योंकि सतयुग में तो ऐसे तो कोई होगा ही नहीं जो अकाली मृत्यु मरेगा, जो कहना भी पड़ेगा तुम्हारा बेटा मर गया, होता ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं ये तो एक झूठा दृष्टांत बनाया है, सतयुग में कोई की अकाली मृत्यु होती ही नहीं है, मोहजीत बनाने वाला तो एक ही बाप है। परमपिता परमात्मा के तुम वारिस बनते हो, जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। तो अपने से पूछो, हम आत्माएं उनके वारिस हैं? शिव बाबा के हम वारिस हैं, हर एक अपने से पूछे। बाकी जिस्मानी पढ़ाई में क्या रखा है, इतनी सारी डिग्रियां ले लेते हैं, तो बाबा कहते हैं तो केवल इस जन्म के लिए, भविष्य तो कुछ भी नहीं बना। तो बाबा कहते हैं बाकी जिस्मानी पढ़ाई में क्या रखा है, आजकल तो पतित मनुष्यों की शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए। और बड़ी बात, पतित मनुष्यों की तो शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए, न बच्चों को दिखानी चाहिए। हाँ, तो बहुत पढ़ाते हैं, बहुत तो वो कहाँ वहाँ उनकी शक्ल भी कैसे होती है, कैसा माहौल होता है, वातावरण कैसा, संग कैसा, पता नहीं कलयुगी दुनिया में। तो न बच्चों को दिखानी चाहिए। बुद्धि में हमेशा समझो हम संगम युग पर हैं, एक बाप को ही याद करते हैं और सबको देखते हुए भी नहीं देखते हैं। हम नई दुनिया को ही देखते हैं, हम देवता बनते हैं, उस नए संबंधों को ही देखते हैं, पुराने संबंध को देखते हुए भी नहीं देखते। ये सब भस्म होने वाला है। हम अकेले आए थे, फिर अकेले ही जाते हैं। एक बाप ही, बाप एक ही बार आते हैं साथ ले जाने। इसको इनको क्या कहेंगे, एक ही बार आते हैं बाप साथ ले जाने, तो साथ जब ले जाते हैं तो इनको क्या कहेंगे, इनको शिव बाबा की बारात कहा जाता है। सब साथ में ले जाते हैं शिव बाबा, इनको शिव बाबा की बारात कहा जाता है, बारात कहा जाता है। शिव बाबा के बच्चे सब हैं। बाप विश्व की बादशाही देते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। आगे तो विष उगलते थे, क्या निकलता था मुख से, विष निकलता था, विष उगलते थे। अब अमृत उगलते हैं, मुख से ज्ञान अमृत निकलता है, तो ये अमृत निकलते उगलते हैं। और पहले विष उगलते थे, क्या क्या बुरे 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 गलत गलत शब्द बोलते थे, तो आगे विष उगलते थे, अब अमृत उगलते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। एक बार किसी ने पता नहीं क्या बुरा शब्द का, हमको तो समझ में नहीं आया क्या कह रही है, क्या कह रही है, क्या क्या बोल देते हैं ना, समझ में ही नहीं आता है। इतने गंदे गंदे शब्द बोलते हैं, असुरों के शब्द बोलते हैं, वो क्या क्या बोल देते हैं। तो बाबा कहते हैं, तुम बच्चों की भाषा ये सब नहीं है, तुम्हारी भाषा तो कितनी रॉयल है, मुख से फूल झरे, रतन निकले, न कि कोई अभिशाप निकले या कोई गंदी बात निकले। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, स्वयं को संगम युग निवासी समझकर चलना है। पुराने संबंधों को देखते हुए भी नहीं देखना है। बुद्धि में रहे, हम अकेले आए थे, अकेले जाना है। दूसरा, आत्मा और शरीर दोनों को कंचन बनाने के लिए ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखने का अभ्यास करना है। क्रिमिनल दृष्टि खत्म करनी है, ज्ञान और योग से अपना श्रृंगार करना है। वरदान, मनमना भव को अलौकिक विधि से मनोरंजन बनाने वाले बाप समान भव। मनमना भव हो, अलौकिक विधि से मनोरंजन मनाने वाले बाप समान भव। संगम युग पर यादगार मनाना, दिवाली भी मना रहे ना, संगम युग पर यादगार मनाना, अर्थात बाप समान बनना, ये संगम युग के सोएज है, मनोरंजन है। खूब मनाओ, लेकिन बाप से मिलन मनाते हुए मनाओ, बाप को भूलो मत मनोरंजन मनाते समय। सिर्फ मनोरंजन के रूप में नहीं, लेकिन मन मना भव हो, मनोरंजन मनाओ। अलौकिक विधि से अलौकिकता का मनोरंजन अविनाशी हो जाता है। संगम युगी दीपमाला की विधि, पुराना खाता खत्म करना, हर संकल्प हर घड़ी नया अर्थात अलौकिक हो, पुराने संकल्प संस्कार स्वभाव चाल चलन ये रावण का कर्जा है, ये सब रावण का कर्जा है, पुराने संकल्प संस्कार स्वभाव चाल चलन ये रावण का कर्जा है, इसे एक दृढ़ संकल्प से समाप्त करो। स्लोगन, बातों को देखने की बजाय स्वयं को और बाप को देखो, स्वयं को और बाप को देखो, और किसी को नहीं देखो ना बातों को देखो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी आज से नया अव्यक्त इशारा शुरू हो रहा है, और अब इस महीने का अव्यक्त इशारा है सफलता मूरत बनो। तो सफलता मूरत बनने की विधि सारे महीने भर में अव्यक्त इशारों में दी जाएगी। सफलता मूरत बनो, आज पहली तारीख है। किसी भी क्षेत्र में सफलता मूर्त बनने के लिए सहनशीलता का गुण धारण करो। जैसे कोई धैर्यता वाला मनुष्य सोच समझकर कार्य करता है तो उसे सफलता अवश्य प्राप्त होती है, वैसे ही सहनशील जो होते हैं वो अपनी सहनशीलता की शक्ति से कठोर संस्कार वाले को भी शीतल बनाकर उन्हें भी सहज योगी बना लेते हैं। तो सहनशीलता के आधार से सफलता मूर्त बनेंगे। आज डबल विदेशी भी काफी आ गए हैं, डबल विदेशियों का प्रोग्राम आज का बता देते हैं। ओम शांति, आई विल अनाउंस इन इंग्लिश। दिस मॉर्निंग 10:30 to 11 मेडिटेशन इन द हार्मनी हॉल ऑफ ज्ञान सरोवर एंड 11